वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि त्रोआस में पौलुस रोटी तोड़ने के बाद प्रवचन करता रहा और बहुत रात हो गई, वरन सुबह दिन तड़के तक प्रचार करता रहा और इसी बीच वहां उपस्थित एक युवक को नींद आ गई और वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा और मृतक पाया गया, परंतु पौलुस ने उसे जीवित किया और विश्वासियों में बड़ी शांति आई। पौलुस पेंतिकोस के दिन तक यरूशलेम में पहुंचना चाहता था, अतः उसने मिलेतुस में ही इफिसुस के विश्वासियों को बुलवाया और उन्हें अंतिम संदेश देकर आगे बढ़ा। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए आज फिर से एक बार हम परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें और अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आज हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए, ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो आपका वचन हम इससे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों के जीवन के तकलीफों को जानते हैं, उनकी वेदनाओं को जानते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में आप अपने आशीष प्रदान करें, ताकि हरेक जीवन आप पर विश्वास कर सके, आपको महिमा और आदर दे सके। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अध्याय 21 से अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पौलुस का यरूशलेम आगमन और बंदी बनाया जाना। हम देखते हैं कि पौलुस 3 प्रचार यात्रा कर चुका था और अब वह लौट रहा है और उसका यरूशलेम में प्रवेश एक प्रकार से अद्भुत विजय यात्रा ही था। मार्ग में उसे चेतावनियां मिल रही थी। वह जानता था कि यरूशलेम में कष्ट उसकी प्रतीक्षा में है। अध्याय 20 मिलेतुस में इफिसुस की कलिसिया के धर्मयुद्धों के साथ पौलुस की मार्मिक भेंट के साथ अंत होता है। अब वह इसराइल के लिए जहाज पर चढ़ता है। आइए हम देखते हैं सूर में पौलुस। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रुदूस में और वहां से पत्रा में और एक जहाज फिनिको को जाता हुआ मिला और उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। मित्रों, क्या आप उस मार्ग को समझ रहे हैं? मिलेतुस से जहाज पकड़कर वे एशिया माइनर के दक्षिणी तट से होते हुए पत्रा गए। वहां उन्होंने जहाज बदला। अब वह कैसरिया के उत्तरी तट पर सूर की ओर बढ़ रहा है। यह स्थान वास्तव में इसराइल के तट पर स्थित प्राचीन फिनिके था। आज यह स्थान लेबनान कहलाता है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, जब कुप्रुस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूर्या को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का बोझ उतारना था। मेरे मित्रों, मुझे यह अभिव्यक्ति अति मन भावना लगता है। मेरे विचार में यह अभिव्यक्ति कुछ अनुवादों में नहीं है। उन्होंने साइप्रस को देखकर पहचान लिया था कि वहां रुके नहीं और सूर पहुंचे। सूर एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र था जो प्राचीन समय से ही वहां उपस्थित था। हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा की सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव न रखना। मेरे मित्रों, वे जो पौलुस के यरूशलेम आने को उसकी भूल मानते थे, वे इस पद का सहारा लेते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस को चेतावनी दी थी। यदि मैं इसे सही समझ पा रहा हूं तो सच यह है कि परमेश्वर का आत्मा अपनी ही बात नहीं काटेगा। मेरे विचार में वह यहां वही कह रहा है जो उसने पहले कहा था। पौलुस यदि आवश्यक बलिदान देने को तैयार नहीं है तो उसे यरूशलेम नहीं जाना चाहिए। पौलुस कह रहा है कि वह बलिदान देने को तैयार है। वह प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन निक्षावर करने को तैयार है। मेरे विचार में यह ऐसा होना चाहिए भी। मित्रों, मैं अनेक कारणों से सोच रहा हूं कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं था। जब वह यरूशलेम गया, वहां जाने में एक कारण था कि उसकी भावनाएं, जो गलत नहीं थी, यह एक अच्छा कारण था। वह अन्य जाति विश्वासियों द्वारा दिए गए दान को लेकर यरूशलेम के कठिन विश्वासियों के पास आना चाहता था। वह अपने हाथों से वह दान यरूशलेम की कलीसिया को देना चाहता था, क्योंकि उसके उन्हीं हाथों ने एक समय यरूशलेम की कलीसिया को उजाड़ा था। वह एक प्रकार से यरूशलेम के पवित्र ज्ञानों के कष्टों का उत्तरदायी था। मेरे मित्रों, वह किसी प्रतिनिधि को यरूशलेम भेजना नहीं चाहता था। वह स्वयं वहां जाकर वह दान देना चाहता था। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं था। इस पर विश्वास करने का मेरा दूसरा कारण है उसकी पत्रियां। पौलुस जब रोम में बंदी था, तब फिलिपी की कलीसिया ने उसे अपनी सहानुभूति की अभिव्यक्ति भेजी थी। वे उससे प्रेम करते थे और उसकी परिस्थितियों में उसे सहानुभूति रखते थे। अतः पौलुस ने उन्हें पत्र लिखा। उसने कहा, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। इसे हम फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 12 पद में पाते हैं। पौलुस के साथ जो भी बुरा हुआ उसे सुसमाचार प्रसारण रुका नहीं। अतः मैं यह नहीं मानता कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। मित्रों, पौलुस के मन परिवर्तन के बाद प्रभु ने हनन्याह को दर्शन देकर जो कहा, वह तीसरा कारण है कि पौलुस परमेश्वर की इच्छा में था। देखिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 15 और 16 पद, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम की पुस्तक के हमारे अध्ययन में पौलुस ने अभी तक राजाओं और शासकों के सामने प्रभु का नाम प्रकट नहीं किया है, परंतु यह तो स्पष्ट है कि प्रभु की इच्छा में उसे यह करना है। अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि वह राजाओं के समक्ष जाता है। उसने राजा अग्रिप्पा को सुसमाचार सुनाया था। यह भी अति संभव है कि वह रोम में नीरो के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसके 22 पद में स्पष्ट है कि उसने नीरो के परिवार में सुसमाचार सुनाया था, क्योंकि वह उन्हें नीरो के परिजनों की शुभकामनाएं भेजता है। यह पत्र उसने रोम से लिखा था जब वह वहां पर बंदी था। और अंत में, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि दूसरा तिमोथियुस अध्याय 4 में लिखता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यह उसने अपने जीवन के अंत समय में लिखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर होता तो ऐसा कभी नहीं लिखता। मैं यह अंगीकार करता हूं कि जब मैं अपनी सेवा में अतीत को देखता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कुछ समय परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहा हूं। मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, और यह मेरे लिए अज्ञान के कारण हुआ था, मेरी ढिठाई के कारण हुआ था। मेरे विचार में यह प्रभु की अपनी विधि में होता है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस यदि परमेश्वर की इच्छा में नहीं होता तो कभी नहीं लिखता कि उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। मेरे मित्रों, मैंने इस पर मनन में समय लगाया है, क्योंकि यहां मतभेद है। सेवा में मेरे अनेक मित्र मेरी इस बात से सहमत नहीं है, परंतु अब मैं भी मित्र हूं। मैं प्रभु में इन भाइयों से प्रेम रखता हूं और उन्हें छेड़ते हुए कहता हूं कि मैं आशा करता हूं कि वे एक दिन ज्योति में देखेंगे। उनमें से एक ने मुझसे कहा, जब हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे तब हम परस्पर सहमत होंगे। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। यहां पर देखिए पौलुस ने कैसा उत्तम काम किया। वहां के विश्वासियों ने पौलुस के साथ घुटने टेक कर समुद्र के किनारे प्रार्थना की। मेरे मित्रों, प्रार्थना करने की सबसे उत्तम विधि है घुटने टेक कर प्रार्थना करें। तथापि आप कहीं भी कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अधिक यात्रा करता हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं समय को व्यर्थ में जाने दूं। इसलिए जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं ट्रेन में और अन्य स्थानों में भी प्रार्थना करता हूं। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 6 और 7 पद में, तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमिस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। मेरे मित्रों, मैं प्रायः सोचता हूं कि पौलुस वहां अधिक समय क्यों नहीं रुका। आपने वहां पौलुस के उत्तम स्वागत पर और उन स्थानों में असंख्य विश्वासियों पर ध्यान दिया होगा। पहली शताब्दी के अंत तक रोमी साम्राज्य में लाखों विश्वासी रहे होंगे। आगे हम देखते हैं कैसिरिया में पौलुस। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसिरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। पौलुस समुद्री तट पर यात्रा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। उस समय वहां पर बस यात्रा के लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी। पौलुस के युग में तो बस भी नहीं थे, अतः उसे पैदल यात्रा करना पड़ा। उसकी सेवा कैसी महान थी। मार्ग में उसे भेंट करने वाले विश्वासियों के बारे में सोचिए कि उसकी सेवा वास्तव में महान थी और अवसर भी अद्वितीय थे। जब मैं एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया या एक शहर से दूसरे शहर में परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाता हूं या वचन का प्रचार करता हूं, तो मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर के काम को देखना कैसी महान प्रेरणा का स्रोत होता है। निसंदेह पौलुस का भी यही अनुभव था। हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणियां करती थी। यहां पर हम देखते हैं कि फिलिपुस एक सुसमाचार प्रचारक था। सुसमाचार प्रचारक का अर्थ है शुभ संदेश की घोषणा करने वाला। इस पद से विदित होता है कि उस समय कलीसिया में महिलाओं का माननीय स्थान था। इन स्त्रियों के पास भविष्यवाणी का वरदान था। अभी तक नए नियम का संकलन नहीं हुआ था, अतः आरंभिक कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान आवश्यक था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबूस नाम एक भविष्यद वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। पवित्र आत्मा पौलुस पर प्रकट कर रहा था कि यरूशलेम जाने पर उसके साथ क्या होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कह रहा हो, पौलुस तेरे साथ ऐसा होगा, क्या तू उसका सामना करने को तैयार है? परमेश्वर नहीं चाहता था कि पौलुस वहां जाकर सोचे कि परमेश्वर ने उसे फंदे में फंसने के लिए छोड़ दिया है। अतः पौलुस स्पष्ट जानता था कि वहां उसके साथ क्या होगा, और वह सब जानने के बाद भी वहां जाने के लिए वह तैयार था। सच तो यह है कि इस भविष्यवक्ता ने उसे कोई नई बात नहीं बताई थी। अध्याय 20 में हम देखते हैं कि जब वह एशिया माइनर में था तब ही वह जान गया था कि वहां उसका बंदी बनाया जाना और सताया जाना अवश्य है। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 12 और 13 पद में हम पढ़ते हैं, जब ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। मेरे मित्रों, आप याद रखें कि यह डॉक्टर लुका का वृतांत है। वह और पौलुस के अन्य साथी नहीं चाहते थे कि पौलुस यरूशलेम को जाए। परमेश्वर का आत्मा पौलुस पर प्रकट कर रहा था कि वह बंदी बनाया जाएगा। पौलुस के लिए बंदी बनाया जाना तो दूर की बात थी, वह तो यरूशलेम में मसीह के लिए प्राण भी गंवाने के लिए तैयार था। मेरे मित्रों, उसने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे रो रो कर उसका दिल न तोड़ें। यहां पौलुस के प्रति विश्वासियों की चिंता हृदय स्पर्शी है। वे उससे कैसा प्रेम करते थे इसे हम यहां पर देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। और मेरे विचार में प्रभु की इच्छा ही पूरी हुई। हम आगे देखते हैं यरूशलेम में पौलुस। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 15 से 17 में लिखा है, उन दिनों के बाद हम बांध छांद कर यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए और मानसोन नाम कुप्रुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पौलुस जब यरूशलेम पहुंचा तब वहां की कलीसिया ने बड़े आनंद से उसका स्वागत किया। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 18 पद में लिखा है, दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। यरूशलेम में कलीसिया द्वारा कैसा महान स्वागत है। अब वह एक पिता स्वरूप था। मेरे मित्रों, वह प्रभु यीशु मसीह की सेवा में था और अपनी देह पर प्रभु यीशु के चिन्ह लिए हुए था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताया। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो, सो क्या किया जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहूदियों ने पौलुस के कामों का जो वर्णन किया वह विकृत किया हुआ था। पौलुस ने वे शिक्षाएं नहीं दी जिनका वे उस पर दोष लगा रहे थे। अब हम एक और मतभेद के विषय में आते हैं जिसकी टीकाकरों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। यरूशलेम में पौलुस ने मन्नत मानी जिसके लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता थी। अतः प्रश्न यह है कि क्या पौलुस परमेश्वर की इच्छा से ऐसा किया था या उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया। यरूशलेम में हजारों विश्वासी थे। इन विश्वासियों ने मसीह में पूर्णता पाई थी, परंतु उन्होंने मूसा की व्यवस्था का त्याग नहीं किया था, परंतु वे अन्य जातियों को व्याख्या पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर अन्य जाति यहूदी विश्वासियों को बाध्य नहीं कर सकते थे कि वे व्यवस्था पालन त्याग दें। मित्रों, यहाँ एक बात आवश्यक है कि उद्धार के लिए व्यवस्था पर निर्भर न रहें। वे जो यह मानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह अन्य जातियों को मूसा की व्यवस्था के पालन के लिए बाध्य नहीं करता है, यह भूल जाते हैं कि वही अनुग्रह यहूदियों को व्यवस्था पालन की अनुमति देता है। यदि उनके विचार में वह परमेश्वर की इच्छा है, तो उदाहरण के तौर पर देखें, पत्रस जब अंताकिया में पौलुस के पास आया, तब उसने मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं खाया था। यहूदी विश्वासी भी मूर्तियों को चढ़ाया हुआ मांस नहीं खाते थे, वरन घृणा करते थे। इससे अन्य जाति विश्वासियों को ठेस नहीं पहुंची थी। फिर भी ऐसा मांस खाने के कारण किसी विश्वासी को ठोकर लगती और उसका विश्वास डगमगाता तो वह अनुचित काम था। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 8 उसके 8 पद में पौलुस हमें स्पष्ट कहता है कि मांस ना खाना हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो भी कुछ लाभ नहीं। मेरे मित्रों, पौलुस ने यह भी लिखा है कि यदि कोई मनुष्य यदि प्रथाओं में घोषित किया गया है, तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद अनुग्रह उसे प्रथाओं के पालन की अनुमति देता है। देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 उसके 17 से 20 पद में, जैसे प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। मेरे मित्रों, पौलुस मनुष्यों को मसीह में लाने के लिए यही सिद्धांत काम में लेता है। देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 19 से 23 पद, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है, अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। अतः मेरे विचार में हमें पौलुस के इस काम की आलोचना करना उचित नहीं है। अनुग्रह ने पौलुस को यहूदी मन्नत मानने की अनुमति दी, वह यहूदियों को खींच लाए। यदि वह अन्य जाति विश्वासी होता और मन्नत मानता तो उस पर इस काम के लिए उंगली उठाई जा सकती थी। हम प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 22 से 26 पद में पढ़ते हैं, लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस से और लोहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। मेरे मित्रों, अब पौलुस क्या करेगा? वह यरूशलेम पहुंच गया है और कलीसिया ने उसका गरिमामय स्वागत किया है। उसने उन्हें विजातीय कलीसियाओं द्वारा भेजा गया दान अर्पित किया। कलीसिया ने उसके द्वारा अन्य जातियों के प्रभु में आने का आनंद मनाया। अब वे पौलुस से कहते हैं कि यरूशलेम में हजारों यहूदियों ने मसीह को ग्रहण कर लिया है और उनमें से एक भी कलीसिया में विभाजन नहीं चाहता है। मसीह की कलीसिया एक है, न यहूदी न अन्य जाति। यहूदी जिसने मसीह को ग्रहण किया है वह यहूदी ही है। अतः वे पौलुस से कहते हैं कि देख, तू एक यहूदी है, वही तेरी पृष्ठभूमि है और तू यहूदियों को मसीह में खींच लाना चाहता है। पौलुस कहता है निश्चय ही। अतः वे कहते हैं क्योंकि तू यहूदी है इसलिए इन चार यहूदियों के साथ जाने में तुझे आपत्ति नहीं होगी। इन्होंने मन्नत मानी है, उन्होंने सिर मुंडाया है और वे मंदिर में जा रहे हैं, क्या तू उनके साथ जाएगा? पौलुस कहता है अवश्य। पौलुस ने मन्नत इसलिए नहीं मानी कि उसे आज्ञा दी गई थी, उसने मन्नत इसलिए मानी थी कि वह यहूदियों को मसीह में खींच लाए। मेरे मित्रों, आपको मन्नत मानना आवश्यक नहीं, परंतु यदि आप चाहें तो आप भी मन्नत मान सकते हैं। यदि आप मन्नत के साथ सिर मुंडाएं तो आपकी इच्छा है। यदि आप मन्नत मानकर बाल खड़े रखें या बड़े रहने दें, यह आपकी इच्छा है। प्रभु के लिए सब उचित है। अनुग्रह के अधीन आपको यह सब करने का अधिकार है। अनुग्रह के अधीन आपकी इच्छा हो तो आप मन्नत माने, परंतु इस व्यवहार में स्मरण रखें कि आप कर्मों से नहीं परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आज की इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और सहायता प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरा संग